نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 109 آیت نمبر 94 سے 106 سورۃ توبہ. لیسن نمبر 109 آیت نمبر 94-106. تفسیر دیکھیں گے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر آؤ گے ان کی طرف. تو کیا کرو اس کے جواب میں؟ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم, تو فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ, ہم نہیں اعتبار کریں گے تمہارا. کیوں؟ اس لیے کہ قد نبان اللہ من اخبارکم, آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ نے تمہاری خبروں پر. کون سی خبریں؟ جو حقیقت تھی تمہاری, ریالٹی, جو اصل میں تمہارا معاملہ تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. پھر ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور دیکھے گا اللہ تمہارا عمل اور اس کا رسول, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو. پس وہ خبر دے گا تم کو اس کی جو تم عمل کر رہے تھے. پیچھے سے سبق کا تسلسل ہے. ہم دیکھ چکے دسویں پارے کے آخر میں کہ کس طریقے سے تبوک سے واپسی پر لوگ آپ کے پاس مختلف عذر اور بہانے پیش کر رہے تھے. اور ہوا بھی یہی تھا کہ جب لوگ تبوک سے بہت زیادہ فتح مندی کے ساتھ اور مال غنیمت لے کر آئے, جنگ تو ہوئی نہیں, جرت ہی نہ ہوئی کسی کو سامنے آنے کی. اور وہ دشمن جو دور بیٹھا دھمکیاں دے رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے ساتھ جانثار صحابہ کو لے کر آ گئے ہیں, تو لہٰذا وہ سامنے نہ آیا اور سب ان کی دھاک جو تھی وہ ختم ہوئی. اب اس سے مسلمانوں کا بہت روب تاری ہو گیا. ارد گرد کے جو قبیلے تھے جہاں بدو رہتے تھے, ان کے دلوں میں بھی اسلام کی بہت زیادہ رعونت آئی. ان کو لگا کہ اسلام واقعی ایک بہت بڑا دین ہے. اب جب کوئی ٹیم جیت کر آتی ہے تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑیں, ایسوسیٹ کریں. ایمان والے کا حال فتح اور جیت دونوں موقعوں پہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. سچے مومن اسلام کی فتح کو دیکھ کر اسلام میں نہیں آتے, اور اسلام کی ناکامی یا وقتی غلبے وقتی طور پہ مغلوب ہونے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہیں جاتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچا مومن نتائج سے بے نیاز ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی فتح ہوتی ہے تو وہ پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنی محبتوں کو جتلا دیں اور ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہمارا تو آپ سے پرانا تعلق ہے, ہم تو آپ کو تب سے آپ کے باپ دادا اور ان کے دادا سے بھی جان رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی ہار جاتا ہے تو لوگ اس سے یوں پہلو کٹ کے لے گزر جاتے ہیں گویا کہ کبھی جانتے نہیں تھے. اب بالکل اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فتح کے ساتھ جا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بہانے بنا کر آئیں گے جو اپنی منافقت کی وجہ سے تاویلیں اور بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے. دو وجوہات ہوں گی ان کے بہانے کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ گلٹ دور کر لیں, اپنے آپ کو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں لا سکیں, شرمندگی مٹانے کے لیے بہانے کریں گے. اور سب سے بڑی ایک اور بات تھی کہ اب کچھ مال غنیمت میں ہمیں بھی تو ملے, کیونکہ ان کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ کچھ لوگ مدینہ میں رہنے کے باوجود بھی صحابہ کے ساتھ اجر میں شامل ہیں, تو وہ اپنا نام اس میں لگانا چاہتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلی کٹائے بغیر ہی شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے تھے. اور ایک اور بھی ان کی نظر میں بات تھی, اور وہ کیا کہ آئندہ کبھی کوئی اور اب بڑی پمپ اینڈ شو والی جنگ ہوئی جس میں بس نام کے ہتھیاروں کا اظہار ہوگا اور بس پھر جیتنا ہوگا تو ہم چل پڑیں گے. یہ سارے وجوہات ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کے آنے کی امید تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے پہلے ہی, یعنی آپ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک سے نکلے ہوئے ہیں, مدینہ نہیں پہنچے, تقریباً ایک مہینے کا سفر تھا اس وقت اونٹوں پہ اور جانے پہ, घोड़ों पे, तो पहले से अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि या तजीरून इलैकुम, ये उजर करते हुए आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। पीछे हमने लफ्ज़ देखा मुअज़्ज़रून या मुअज़्ज़िरून, हाँ, तो उजर कौन सा उजर होता है, उसी लफ्ज़ को हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। मुअज़्ज़िर वो शख्स होता है जिसके पास कोई हकीकी उजर ना हो, फिर भी वो उजर पेश करे। सोचिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है जो अल्लाह ताला ने यहाँ इस्तेमाल किया। है कुछ भी नहीं पास, लेकिन बयान ये कर रहा है कि बहुत मजबूर था। आ जाएंगे किसकी तरफ, तुम्हारी तरफ। इलैकुम से जमा का सीगा, तो पता चलता है कि सिर्फ नबी सल्लम के सामने ही जाके उजर नहीं पेश करते थे, वो सहाबा कराम के पास भी आते थे। और होता ऐसे ही है, जब भी कोई नेकी के किसी मौके से पीछे रह जाता है ना, तो वो सिर्फ फ्रंट लाइन वालों के सामने आके सच्चा नहीं होता, बाकी मुसलमानों के सामने भी आके अपनी सच्चाइयाँ पेश करता है। बड़ा दिल चाहता है नेकी करने को, बड़ा दिल चाहता है हज करने को, बड़ा ये, यानी फिर उसकी आम इज्तमाई गुफ्तगू भी इस किस्म की होती है जिससे वो अपने आप को सच्चा साबित करे। अब एक लफ्ज़ होता है उज़र, यहाँ अगर आप लफ्ज़ देखें तो या तज़ीरून है, ते कहाँ से आ गई। अरबी ज़ुबान का एक छोटा सा असूल नोट कर लें, जब लफ्ज़ उज़र होता है तो वो झूठा बहाना होता है या झूठी वजह होती है, लेकिन जब उज़र ए तज़िर में बदल जाता है, जैसे कि यहाँ हो रहा है, असल में ये एक बाब होता है, उसकी वजह से बाब इफ्तियाल में आता है, तो जब उज़र की बजाय ए तज़िर का लफ्ज़ आता है जैसा कि यहाँ आया है, तो ये उज़र सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। और या तज़िरून अगर पूरा लफ्ज़ देखें, किसी इल्ज़ाम को दूर करने के लिए वजह बयान करना, बहाना बनाना, इसका खूबसूरत तर्जमा यह है कि सच्चे झूठे उज़र करेंगे, क्योंकि इसमें सच और झूठ दोनों आते हैं। आपकी तरफ आएंगे, बहाने करेंगे, आपको खुश करना चाहेंगे ये बातें करके, इज़ा रजा तुम इलैहिम, जब आप इनकी तरफ आ जाएंगे, यानी तबूक के सफ़र से वापस। कुल, क्या कह दीजिए आप। नबी सल्लम को अल्लाह ताला पहले से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि किसी भी काम करने वाले को वक्त से पहले इंस्ट्रक्शंस अगर दे दी जाएँ तो वो उस तरह की गलतियाँ नहीं करता जो बाद में उसकी और दूसरों की शर्मिंदगी का सबब हों। क्या कह दीजिए, ला ता तज़िरू, मत बहाने करो, यानी बिल्कुल दो टोक अंदाज है, आप कोई ज़रूरत नहीं ऐसी बात करने की, क्योंकि लन नो मीना लकुम, हम हरगिज़ नहीं तुम पर ईमान लाएंगे। बज़ाहर तो आप यही सोच रहे होंगे ना इसका तर्जुमा, क्योंकि नो मीना आमना यू मीनू, हम ईमान लाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आप एक बड़ा बारीक सा नुक्ता देखेंगे, लफ्ज़ नो मीना के बाद क्या आ रहा है, लाम आ रहा है ना। तो अरबी ज़ुबान में जब नो मीना या आमना, यानी ये फ़ेल है, इसके बाद लाम आ जाए, जैसा कि यहाँ आ रहा है नो मीना के बाद, जब लाम का सिला लग जाए या अगला लफ्ज़ लाम हो, तो ईमान लाने की बजाय एतमाद करने का मानी होता है। आमतौर पे तो हम ईमान लाते हैं ना, हाँ, आमंतु बिल्ला ही कहते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते कि आमंतु लिल्ला। अगर कोई कहे ना आमंतु लिल्ला, तो उसका मतलब होगा कि हम एतमाद करते हैं अल्लाह पे, लेकिन ना मन तो बिल्ला ईमान लाना, यहाँ क्या है, नो मीना लकुम, हम तुम पर एतमाद नहीं करेंगे, ये मुराद है कि तुम पे ईमान क्या लाना है, बस तुम्हारी बात का हमें अब एतबार नहीं रहा, क्योंकि क़द नब्बानल्लाहु मिन अखबारिकुम, तुम्हारी खबरें तुम्हारे दिल के पोल अल्लाह ने बता दिए। पता क्या चला कि गैब अल्लाह जानता है, रसूल नहीं जानते। कलाम क्या होता, क़द आलमु अखबारकुम, मैं जानता हूँ तुम्हारी खबरें, नबी नहीं जानते बल्कि अल्लाह उनको जो बताना चाहें वही खबरें होती हैं, और अखबार खबर की जमा, यहाँ मुराद हालात है, तुम्हारे हालात वही के ज़रिए बता दिए गए। वो क्या खबरें थीं, इनके दिलों की मुनाफ़कत की खबरें थीं, इनके फसाद की खबरें थीं, इनकी साजिशों की खबरें थीं, और इनकी रास्ते की महफिलों गॉसिप, इनकी नजवा की खबरें थीं जो इन्होंने अल्लाह के नबी की गैर मौजूदगी में की थीं। लिहाजा वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, बस अभी अल्लाह और देखेगा, यानी अभी तुम्हारी ज़िंदगी में और बड़े मौके आएंगे। अगर तुम कहते हो कि हम हकीकी मजबूर थे, तो अगले मौके पे तुम काम करके दिखा दोगे। कितना खूबसूरत नुक्ता है, कोई आखिरी तबूक थोड़ी थी, आखिरी मौका थोड़ी आया इस्लाम के रास्ते में, अल्लाह के नबी रहें ना रहें, तुम्हें इस्लाम के लिए काम करने के बहुत सारे मौके दिए जाएंगे, कभी तुम्हें नबी के बग़ैर भी करना पड़ेगा, तो फिर देख लेंगे। अब ज़्यादा बातें ना करो, वक्त का इंतज़ार करो, जब तुम एक और मौका दिए जाओगे, अगर उस वक्त फिर तुम ना करोगे, तो फिर सोचने की बात है कि ये हमेशा मजबूरी आप ही को क्यों होती है, ये हमेशा एतराज़ आप ही की तरफ से क्यों उठता है भाई, ये हमेशा प्रॉब्लम आप ही की तरफ से क्यों आता है? कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा शिकवे वही करते हैं, सबसे ज़्यादा शिकायतें वो करते हैं, सबसे ज़्यादा नाराज़ वो होते हैं और सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगंडा वही फैलाते हैं। मुझे तो कभी कोई कहता है ना कि लोग ये कह रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ कौन कह रहे हैं? वो लोग होते नहीं, वो एक होता है कोई, और वो एक ही बंदे की बात बात जब बहुत बड़ी बन जाती है तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी कभी कोई उज़र या बहाना पेश करे तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए। किसी से कुछ पूछे ना पूछे अगला बहाना लंबा करे कि नो प्रॉब्लम ला तअतज़िरू लन नौमिन लकुम कद नब्बअना अल्लाहु मिन अखबारिकुम, बल्कि आप तो सिंपल कह दें कि ला तअतज़िरू बस यरल्लाहु अमलकुम व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल को आपकी हालत ज़्यादा पता है, मैं क्या करूँगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर आप पलटाए जाओगे गैब और हाजिर सबको जानने के लिए, यानी अल्लाह की ज़ात है वो पीछे की बातों को भी जानता है, आगे की बातों को भी जानता है, और जिसको ये बात समझ आ जाती है उसके अंदर मुनाफ़कत नहीं रह सकती। हम इंसानों के अंदर सच्चे बनने के लिए जो भी कर लें, लेकिन अल्लाह के पास बातें नहीं, दावे नहीं, अमल देखे जाएंगे। और आप देखिए कि आलिमुल गैबि वश्शहादा ये अल्लाह की सिफत है ना, तो इस पे अगर हम अपने दिल को परखें तो इस वक्त मेरा कुरान पढ़ाना, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपका पढ़ना, लेकिन हमारे दिल में क्या छुपा हुआ है? आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो गैब और हाजिर को जानने वाला है, और चलो वही जान लेता तो इतना ही काफ़ी था। फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो खबरें देगा तुमको क्या तुम अमल करते आए थे। पता क्या चला कि दिल की बातें छुपती नहीं हैं, अच्छी बातें दिल में होंगी अल्लाह उसको भी खोलेगा, निफाक होगा फिर भी खोलेगा। चलिए अब ये अल्लाह के नबी को एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी गई, आगे फरमाया सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम, अन करीब ये कस्में खाएंगे अल्लाह की जब तुम इनकी तरफ पलट कर आओगे। क्यों खाएंगे ये कस्में? लितुरिदू अनहुम, ताकि इनसे दरगुजर करें, एक्सक्यूज़ कर दें इनको, माफ़ कर दें इनको, पार्डन दे दें, माफ़ कर दें, जैसा भी है ठीक है, फिर जो भी तुम्हारे हालात है, यानी आपके सामने ये इस किस्म की बातें क्यों करेंगे? ताकि आप इनसे दरगुजर करें। क्या करें फिर आप? फारिदु अनहुम, इग्नोर करो इनको, अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा मुंह ना लगाओ, बहुत ज़्यादा इनसे बातें ना पूछो। क्यों? इसलिए कि फ़ायदा कुछ नहीं होगा, मौका तो गुजर गया। तुम्हारी बातें पूछने से क्या ये तबूक की नेकी से जो महरूम रह गए थे क्या इनको वापस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बस इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इन नहुम रिज सुन, ये नापाक हैं क्योंकि इनके दिल नापाक हैं। इन्होंने इस्लाम के इतने मुश्किल मौके पे इस्लाम को छोड़ दिया, जान बचा के बैठे रहे और इस्लाम चला गया, दुश्मन के मुंह में जा रहा था, पलट के आते ना आते आप इमेजिन तो कीजिए। खुदा ना खास्ता तबूक के मौके पे ये सहाबा कराम जो इखलास के भरे हुए कुर्बानियों की दास्तानें रकम करते हुए घर से निकले थे, अगर ये सारे ख़त्म हो जाते तो क्या इस्लाम की तारीख बनने से पहले ना बिगड़ चुकी होती? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो गए नहीं थे, उनको रोका अल्लाह के नबी किसी काम से रोक के गए थे, जब उन्होंने देखा कि पीछे सिर्फ मुनाफिक हैं और कोई और नहीं, ये भी चल पड़े पीछे आगे, काली तुम कहाँ आ गए? कहा अल्लाह के नबी मेरे से नहीं रहा जा रहा, वहाँ मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा मुखलिस सहाबा में से, तो मैं इस नेकी से क्यों पीछे हटूँ? आपने कहा अली गम ना करो, क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे तुमसे वो नस्बत हो जो हज़रत मूसा को हारून से थी? तुम जाओ, यानी जिसको रोका जाएगा किसी मैनेजमेंट के लिए किसी काम के लिए उसका भी दिल तड़प रहा है, और जो बग़ैर बहान बग़ैर किसी उज़र के किसी वजह के अगर रुके होंगे तो क्या फिर उनके दिल में इस चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए कि हमने कितना इस नेकी के मौके को ज़ाया कर दिया? इन न हम रिज सुन, अल्लाह इनको रिज कह रहा है, चाहे इन्होंने अपने नाम कितने बड़े बड़े रखे हुए थे, इनको छोड़ दो। वमा वाहम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाम बिमा कानू यक्सिबून, बदला है इनके करतूतों का, इनकी कमाइयों का, जो कर रहे थे इनको करना होगा। अब देखिए कि दुनिया में भी जो बेकार चीज़ें होती हैं ना उसको हम जला दिया करते हैं, अमूमन ट्रैश को बाद में जला दिया जाता है, रद्दी कागज़ों की टोकरी को बाद में कागज़ों का आग लगा दी जाती है। अल्लाह भी ऐसे लोगों को क़्यामत के दिन जहन्नम की भट्टी में डालकर आग लगा देगा, किसी काम के नहीं है ये, बेकार लोग हैं जो अल्लाह के दीन की कदर ना पहचाने या जो अल्लाह के दीन को मुश्किल में डाल के ख़ुद आसानियों का तलब करने वाला हो, फिर उसको अल्लाह ताला ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रखता। कभी नबियों के ज़रिए से उनको हलाक करवा देता है और कभी उनके ऊपर कोई आसमानी आफत आ जाती है जिसकी वजह से वो हलाक हो जाते हैं। फिर फरमाया यहलिफूना, लकुम, ये कस्में खाएंगे तुम्हारे लिए। क्यों? लितरदउन हुम, ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। यहाँ देखिएगा कि मुनाफिक की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की कि ये पीपल प्लीज़र होता है। इसको इस बात की ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती कि मुझसे अल्लाह खुश है कि नहीं, इसको ये बड़ी फ़िक्र होती है कि लोग मुझसे खुश हैं कि नहीं। दीनी काम करने वाले मुझसे खुश रहें, आलिम हजरात मुझसे खुश रहें, और साथ ही साथ ये अपने ख़ानदान, अपने लोगों, दूसरे दीन वालों को खुश करना चाहता है। कहते सबको खुश रखो, क्योंकि इसको पता था कि अगर ये दीनदार लोग ही मुझसे नाराज़ हो गए, कल मेरे बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी, कल मेरी तिजारत कैसी होगी, कल तो इस्लाम का ठप्पा ही मेरे नाम से हट जाएगा। तो ये आपको बड़ा खुश करता है। कहा अच्छा, फ़ाइन तर दऊ अन होम, ए नबी अगर आप इनसे खुश हो भी जाएँ, यानी इनकी खूबसूरत चिकनी चुपड़ी बातों में आके, इनके दावों के अंदर आके अगर आप खुश हो भी जाएँ तो हो जाएँ। फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन, अल्लाह नहीं राज़ी होता नाफरमान कौम से। कितना सख्त अंदाज़ है नबी के लिए भी। ये ऐसी है सिर्फ बात समझने के लिए कि जैसे बाप और माँ एक बच्चे के बारे में बात करें। माँ का दिल अमूमन बच्चे के लिए नरम होता है बाप की निस्बत। अब माँ किसी वक्त बात पे कहे, बाप को कह दे अच्छा भाई कोई बात नहीं ना, मैं तो इससे राज़ी हो गई, कोई बात नहीं, इसको मैंने माफ़ किया, तो बाप कहता है तुम होती हो तो हो, मैं तो नहीं होता। क्योंकि बाप उसकी ज़्यादा शिद्दत से जानता है बात के उसके अंदर गलत क्या था। तो बात का मकसद क्या है कि अल्लाह के नबी की भी नहीं चल सकती जहाँ अल्लाह ताला को नाराज़ करेंगे लोग, और जो सिर्फ़ अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं उनसे नबी भी राज़ी हो जाता है। फिर आप देखिए कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है ना। पहले आए तो उज़र दिखाए, या तज़ीरून, हाँ, फिर उज़र ना चले तो बाद में यहलिफून लकुम की बातें आ गईं। इससे क्या पता चलता है कि मुनाफिक जो होता है ना वो पैंतरे बदलता है। छोटी बातों से शुरू होता है, बड़ी बातों में आता है, और होते होते उसका दिल क्या चाह रहा होता है कि किसी तरह मैं सच्चा हो जाऊँ। अब आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ देखें कि इतना तस्करा निफाक का, इसीलिए सूरह तौबा हज़म नहीं हो रही लोगों को। कई लोग इसके मुतालबे कर चुके हैं कि इसको कुरान से निकाल दें, और ये सूरत जो है जिसको मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता आप नोट कर सकते हैं, और वो क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी दौर है, और ग़ज़वे तबूक के मौके पर मोमिन और मुनाफिक खुल के सामने आ गए। अब जब ये सामने आए तो क्यों आए? जहाँ इसके और बहुत सारे फ़ायदे थे ना, वहाँ एक इस दर नुक्ता है हदीस की हिफाजत का। अल्लाह को पता था कि नबी के दुनिया से जाने के दिन आ रहे हैं। जहाँ बाकी इतने साल से इन मुनाफिकों को बर्दाश्त किया हुआ था, इनके ऊपर पर्दे डले हुए थे, अब भी रह सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे कि नबी के बाद सहाबे कराम का जो मुकाम बनने वाला है, जो उनकी सेह होगी, जो उनकी शान होगी, अगर उसमें ये चंद गिनती के ही सही अबू अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक शामिल हो गए, तो कहीं कल लोग अल्लाह के नबी की हदीसों को लेने से इनकार कर दें कि जी हमें नहीं पता ये किसने कही है, और उसमें तो मुनाफिक भी होते थे, मोमिन भी होते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि हदीस में आपको जहाँ नाम मिलेगा ना, मुखलिस सहाबा का मिलेगा। अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, अन इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु, अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, एक हदीस भी आपको नहीं मिलेगी अन अब्दुल्ला बिन उबई फला और फला। क्यों रदियल्लाहु अन्हु ने हाथ था तो था तो सहाबी। दिल ने कैसा मामला किया, साथ रह के हम प्याला हम नवाला होने वाली कैफियत ले ले, हम मशरब, इतना अल्लाह के नबी के साथ रहने वाला, क्यों उसके नाम के साथ रदी अल्लाहु अन्हु नहीं आता? एक हदीस की तौफीक नहीं हुई। इससे पता चलता है कि मुनाफिक का इल्म की महफिल में दिल नहीं लगता। अल्लाह के नबी की महफिलें सजती थी, ये मुनाफिक उस वक़्त अपनी दूसरी चीज़ों में लगे होते थे, इनको और बड़ी सरगर्मियाँ होती थी उस वक़्त। वही तो इनके मौके की बातें होती थी कि जिस वक़्त सहाबा कराम और अल्लाह के नबी की नज़रें इन पर नहीं होती थी। जो करना है, जो साजिशें करनी है, जो ढकी छुपी बातें हैं वो कर लो, ताकि हमारी बातें ना खुलें। इनकी अपनी मीटिंग्स हो रही होती थी उस वक़्त, बाज़ दफ़ा दारो नदवा के अंदर। इनको इल्म मिला ही नहीं, तौफीक छिन गई। और निफाक और इल्म, ये दो बिल्कुल साथ रहने वाली चीज़ें हैं। इल्म आता है तो निफाक कम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कुरान पढ़ते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिलों को चेक करते जाएँ, और आप कुरान पढ़ना छोड़ें, आप बिल्कुल पहले से ज़्यादा नेक हो चुके होंगे अपनी नज़रों में। कभी भी कोई कहे ना आप तो बहुत नेक हो गए, आप बहुत अच्छे काम करें, तो उनको कहा करें कि नेक तो हम तब थे जब कुरान नहीं पढ़ते थे, सबसे नेक समझते थे अपने आप को। अब तो हर दिन अपने धब्बे दिखते हैं, अब तो हम इतने गंदे हुए, अपनी ज़ात ऐसे लगता है जैसे पाँव में मसला हुआ एक पत्ता जो दरख्त से गिरा हुआ, इतना सूखा कि जिसके अंदर कोई रत नहीं रही ज़िंदगी की। قرآن بندے کے دل کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، علم بندے کو اپنی منافقت دیکھنے پہ مائل کرتا ہے، اور بے علم شخص ہمیشہ دوسرے کو منافق سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے سوا سب منافق لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نفاق سے نہیں ڈرتا مگر وہی جو منافق ہے، یعنی خود پہ نفاق کا ٹھپا لگوانا یا اپنے آپ کو منافق سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس موقع پہ جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئے تھے نام، تو اس وقت حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ان کو ان کے نام بتا دیے، تقریباً 12 کہیں 18 لوگوں کا نام آتا ہے، اسی کے کم و بیش نام آتے ہیں، آپ نے ان کو بتا دیے، لیکن کہا آگے بے شک کسی کو نہ بتانا، اللہ اپنے نبی کے ذریعے بتانا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کوئی فتنے اٹھیں تو پتہ چلے کہ اس کا سر کہاں سے مسلنا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول کہتے ہیں، سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، راز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہو گیا کہ ایک دن حضرت حذیفہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کون کون ہے، یعنی مجھے کوئی ٹو نہیں ہے کہ میں ذرا سب کے نام پہ بیجز بنوا لوں، منافق ایک، منافق دو، منافق تین، بس مجھے ایک بات بتا دو کہ میرا نام تو نہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ 70 کے قریب صحابہ کرام جو تھے، جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا نام آتا ہے، جو اپنے اوپر نفاق کا شبہ رکھتے تھے۔ ہم کیسے آج اپنے آپ کو کہیں کہ بس جی بس ہمیں نہ کوئی کہے، ہم سے زیادہ نیک کون ہے، اور ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ، اور ہمارے حالات تو اللہ جانتا ہے، کوئی کسی کو نہ کہے، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو ضرور سمجھے۔ دیکھیے صفائی تب رہتی ہے جب صفائی کا احساس باقی رہتا ہے، جب گھر گندا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو گھر نہیں صاف رہتا نا، تو جو بندہ خود کو نفاق سے پاک سمجھتا ہے وہ تو بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہیں پڑھتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں منافق نہ ہو۔ اللہ اکبر، پڑھ کے دیکھیں تو لگتا ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میں تو جب سے یہ پڑھا رہی ہوں آپ کو ان دنوں میں غزوہ تبوک اور سورۃ توبہ اور اس طرح کی چیزیں، میرا تو دل ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرینیٹ نہیں کیا ہوتا۔ یقین کریں یہ سورت تو دل کو یوں بلینڈ کر رہی ہے، کیسے لگتا ہے کہ بس ایک شیک دینے کی دیر ہے اور دل کا مکسچر بن جائے۔ کہ کیا وہ کردار تھے، کیا ان کا حال تھا، اور اس کے برعکس منافقوں کی صرف ایک ہی طلب تھی کہ لی تردو انہم، بس آپ ہم سے خوش رہیں، سامنے سامنے رہنا چاہتے تھے، چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ آنا چاہتے تھے۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ نہیں خوش ہوگا،